ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के बुधवार के कार्यक्रम में। भगवद गीता का दूसरा अध्याय, अब तक हम कितने श्लोक अपनी चर्चा कर चुके हैं? 5। और अब तक अर्जुन अपने तर्क छोड़े नहीं हैं, अब तक वो अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे प्रबल तर्क उन्होंने पिछले 2 श्लोकों में अर्पित किया कि विशेष रूप से भीष्म और द्रोण, जो कि गुरुजन हैं, मेरे पूजनीय हैं, जिनके ऊपर मुझे फूलों की वर्षा करनी चाहिए न कि बाणों की। गुरु न हत्वा ही महानुभावान, कि ये महान अनुभाव वाले हैं, कोई साधारण नहीं है भीष्म और द्रोण। महान अनुभाव का अर्थ महान विचारधारा वाले। हालांकि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनकी संकीर्ण विचारधारा थी, परंतु भीष्म और द्रोण, इनकी विचारधारा इतनी महान थी कि केवल भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने हेतु ये शत्रु पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के विपरीत खड़े हुए और युद्ध किए और भगवान के पार्षदों, अर्जुन जैसे पार्षदों को मारने के लिए इन्होंने धनुष और बाण उठा लिए। तो अब हम भगवद गीता के उस मोड़ तक आ रहे हैं जब अर्जुन अब हताश हो रहे हैं और कोई तर्क उनके तर्कों के तुणीर में बाकी नहीं रह गया। तब ये जो श्लोक आज हम लेंगे, 6 श्लोक, जिसमें अब अर्जुन अपनी दुविधा मन स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं और धीरे धीरे जो उनका वॉल्यूम था तर्क प्रस्तुत करने का, वो कम हो रहा है इस श्लोक से, क्योंकि यहां पर अब जो टोन है अर्जुन के बोलने का, जो टोन है वो हताश असहाय, कि अब इससे आगे मैं ना तो कुछ सोच पा रहा हूं ना मैं कुछ कर पा रहा हूं। और फिर अगला जो श्लोक लेंगे हम अगले हफ्ते, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम सब साधकों के लिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जब अर्जुन अब एक शिष्य के रूप में ऐसे खड़े होंगे भगवान के सामने, तो अंग्रेजी में जिसे कहते हैं दिस इज द प्रिल्यूड, प्रीकर्सर, कि यहां से अर्जुन की शरणागति मानो प्रारंभ हो रही है। यहां पर शरणागति के लक्षण नहीं दिख रहे इस श्लोक में, परंतु शरणागति के पहले के लक्षण इस श्लोक में हम देखेंगे। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। नैचद्विद्मः कथरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु। यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा नैचत् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा अर्जुन यहां पर जो अंतिम पंक्ति है इसमें कहते हैं ते वस्तिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। प्रमुखे धार्तराष्ट्र का अर्थ है धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र। अब पिछले श्लोक में और उसके पिछले श्लोक में हमने क्या सुना, अर्जुन का रथ किनके सामने खड़ा है, भीष्म और द्रोण इनके सामने अर्जुन का रथ खड़ा है। और पिछले दो श्लोकों में अर्जुन भीष्म और द्रोण के विषय में बोल रहे हैं, लेकिन इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि जो धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र हैं ते वस्तिता जो अवस्थित यहां पर हैं सामने, तो ये थोड़ा भ्रमित हमें करेगा कि देख रहे हैं भीष्म द्रोण को और प्रमुख धृतराष्ट्र के पुत्रों के बारे में क्या बोल रहे हैं। यहां पर अर्जुन की उदारता देखिए कि भीष्म और द्रोण को देखते हुए उनके अंदर जो करुणा भाव उत्पन्न हुआ है वो इतना है कि धृतराष्ट्र के प्रमुख पुत्र कौन, दुशासन और दुर्योधन, जिन्होंने जितना कुछ इनके साथ किया अत्याचार ये इन दोनों ने ज्यादा किया, तो भीष्म और द्रोण को देखते हुए इनके अंदर इतनी करुणा आ रही है अर्जुन के मन में कि इन दोनों को, दुर्योधन और दुशासन को भी वो क्षमा करने के लिए यहां पर उतारू हो चुके हैं। और कहते हैं कि यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, कि यहां पर मैं खड़ा हूं, हम सब युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव सारे पांडव पांडु सेना कुरु सेना ये हम लोग खड़े क्यों हैं, क्योंकि सब जीतना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं हमारे ऊपर, हम जीतना चाहते हैं इनके ऊपर। परंतु यहां पर अर्जुन ये ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भगवान कि जीत की परिभाषा क्या है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें लग रहा होगा कि ये क्या पागलपन चल रहा है, जीत की परिभाषा क्या है। नहीं, अर्जुन यहां पर बहुत आगे की सोच रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में भी हमने सुना अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इन्हें मारूंगा मैं तभी जीत पाऊंगा, बिना मारे तो जीत नहीं पाऊंगा, और इनको मार दूंगा तो ये जो मैं जीती हुई ट्रॉफी दिखाऊंगा किसको, इनके मृत शरीर को, क्योंकि जो युधिष्ठिर इत्यादि हैं वो तो मेरे साथ ही हैं हर समय, चाहे मैं हारूं तो भी वो मेरे साथ हैं, तो मुझे यदि इनके साथ अपना जीवन जीना है तो मैं हार कर भी जी सकता हूं, परंतु जीत कर मैं उनके साथ नहीं जी पाऊंगा, तो क्या वो मेरी जीत है। एक दृष्टिकोण से अर्जुन के मन में यह विचार आ रहा है कि एक शिष्य जो है वो अपने गुरु के सामने जीतना चाहता है, गुरु से नहीं जीतना चाहता, गुरु के सामने गुरु के लिए जीतना चाहता है। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बाकियों को मार दूं इन दोनों को नहीं, ये दोनों को जब तक नहीं मारूंगा वो हस्तिनापुर का राज्य नहीं मिलने वाला, और ये जो दो गुरुजन हैं इनको इनको दिखाना मुझे विजय मेरा सर्टिफिकेट, मेरा विजय पत्र, लेकिन कैसे दिखाऊंगा? और अर्जुन यहां तक पिछले श्लोकों में बोल दिए कि ये जो मेरा विजय सर्टिफिकेट होगा इसकी स्याही कौन सी होगी? भीष्म और द्रोण के रक्त की स्याही। इनके रक्त की स्याही से मैं उस कलम से मेरा विजय पत्र लिखूंगा, क्या फायदा? तो यहां पर ये इनकी दुविधा मन स्थिति, याने वहत्वा न जिजी विषामस, इनको मारने के पश्चात जो मुझे राज्य मिलेगा भोगने के लिए, मैं उसे जीत मान ही नहीं रहा, इससे अच्छा ये जीत जाएं, इससे अच्छा ये जीत जाएं, ताकि मैं मरते समय इस तसल्ली में मरूं कि अंततः मैंने अपने गुरुजनों की कुछ तो सेवा की। तो यहां पर अर्जुन ये तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि जीत होती है जब कोई व्यक्ति संतुष्ट होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों के पास ऐश्वर्य बहुत आ जाता है, सफलता बहुत आ जाती है, परंतु संतुष्टि आना बहुत दुर्लभ वस्तु है। तो यहां पर अर्जुन हार में अपनी संतुष्टि मान रहे हैं और जीत में अपनी असंतुष्टि मान रहे हैं, अर्थात वो जीत उनकी हार है और ये हार इनकी जीत है। समझ में आया? समझ में नहीं आया इसलिए तो भगवान ने गीता सुनाई आगे, अर्जुन के भी समझ में नहीं आया। अगर समझ में आ जाता तो अपना अगला वेडनेसडे का प्रोग्राम नहीं होता, फिर हमको भागवतम चालू करना पड़ता, भगवत गीता उतनी होती 2.6 तक। तो आज के श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे, सबसे पहले अर्जुन की दुविधा मन स्थिति, फिर अर्जुन का ये महात्याग जो अर्जुन यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल त्याग नहीं, ये ऐसा नहीं कि दुर्योधन ने या किसी ने आके कहा अर्जुन एक तीर देना, थोड़ा कम पड़ रहा है एक तीर, तो अर्जुन ने निकाल के अपने तुणीर से एक तीर दे दिया, या रथ पे एक घोड़ा कम है, थोड़ा एक घोड़ा तुम्हारा निकाल के दे दो। यहां पर अर्जुन का महात्याग देखा जा रहा है, और अंततः भगवान श्री कृष्ण का क्या मत है अभी तक बताए नहीं, परंतु फिर भी क्योंकि हमारे पास पूरी गीता है तो उसमें से हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का क्या मत है अर्जुन के इस महात्याग को देखते हुए। तो अर्जुन की दुविधा मन स्थिति, अच्छा अब तक हम प्रथम अध्याय से जो यहां तक पहुंचे हैं यही हमने देखा है कि दुविधा मन स्थिति अर्जुन की चल रही है कि इन्हें मारूं या न मारूं। बीच बीच में अर्जुन दुविधा मन स्थिति में नहीं थे, अर्जुन ने कह दिया था कि नहीं मारूंगा, बस बहुत हो गया, चलो अटैची पैक करो चलते। पूरे दृढ़ निश्चय से बीच बीच में बोल देते, परंतु फिर हताश होके नहीं, भगवान की तरफ देखते और भगवान कोई स्वीकृति नहीं देते कि तुम जो बोल रहे हो। बीच में कभी भगवान ने ऐसा नहीं कहा हां बहुत अच्छा अर्जुन बोलो और बोलो। कई बार होता है ना, आप किसी से बात करते हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो बीच में वो बोलता रहता हां हां हां, नहीं बोलता हेलो है क्या है अरे दे, फिर वो हां हां। अब कभी बीच में भगवान ने हामी नहीं भरी तो अर्जुन दुविधा मन स्थिति में चले जाती, भगवान हां क्यों नहीं बोल रहे मैं जो बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं? हां भगवान ने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पंडितों की बातें तो कर रहे हो लेकिन पंडित नहीं हो तो। आगे चल के इसी अध्याय में भगवान कहते हैं, तो अर्जुन की दुविधा मन स्थिति यहां पर एक बात पर गौर करना होगा कि इंद्रियों का प्रभाव मन पर कैसे पड़ता है। देखिए, अच्छा कैसे आपको समझ में आएगा कि इंद्रियों का प्रभाव अर्जुन के मन पर पड़ा इस स्थिति में, ये जो दो श्लोक हमने लिए और दूसरे अध्याय के। द्विधा मन स्थिति के संदर्भ में इंद्रियों का प्रभाव मन पर कैसे पड़ा है? हाथ से गांडीव छूट रहा है। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, हाथ से। अब अर्जुन ने गांडीव बहुत बार नीचे छोड़ा था, ऐसा नहीं कि हर बार हाथ में 24 घंटे गांडीव को ले रहते थे। लेकिन यहां पर ठीक है, ये एक शारीरिक लक्षण है, गांडीव हाथ से छूटा। परंतु यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं दुविधा मन स्थिति की, अंदर मन के अंदर जो दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए, अर्जुन की दुविधा मन स्थिति इस श्लोक से यदि हम लें तो कब हुई? जब भीष्म और द्रोण को देखा ऐसे एकदम सामने, तो भीष्म और द्रोण को क्या पहले देखा नहीं था? मानो भगवान पूछे, अरे इनको क्या पहले कभी देखा नहीं? क्या इनको जानते नहीं कौन है ये? परंतु इस स्थिति में कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर तैनात सेना एक दूसरे के सामने अस्त्र शस्त्र लिए, अब अर्जुन जो देख रहे हैं उस देखने में और पहले वाले देखने में बहुत अंतर है। अर्थात आंखें वही हैं, विषय वस्तु भी वही है, स्थल बदल चुका है, स्थिति बदल चुकी है, समय बदल चुका है, परिस्थिति अलग है। इससे यह समझ में आता है कि हमारे जीवन में हमारी जो इंद्रियां हैं, मान लो आंखें, ये आंखें किसी वस्तु को पहले भी देखी होंगी और यही आंखें किसी वस्तु को बाद में भी देखती हैं। कई बार बहुत अंतर पाया जाता है मन में। जैसे एक छोटा बच्चा 500 रुपए का नोट देखता है, एकदम 2 साल का बच्चा 500 रुपए का नोट देखता है, क्या देखता है वो? कागज का टुकड़ा। वो उसकी विचारधारा क्या है कि कैसे इसको कुछ खेलने में इस्तेमाल करूं, कैसे फाड़ूं, मुंह में डालूं, कुछ कश्ती बनाऊं कागज की या रॉकेट बनाऊं। वही 2 साल का लड़का 20 साल का हो जाता है, फिर रखो 500 रुपए का नोट। वही आंखें हैं, वही 500 रुपए का नोट, अब मन में विचार कुछ और है। कैसे 500 का 5000 करूं, है ना, ये विचार आएगा। तो यहां पर अर्जुन की दुविधा मन स्थिति प्रारंभ हुई आंखों के द्वारा। आंखों से अर्जुन ने देखा और देखने के पश्चात मन में दुविधा मन स्थिति। तो ये बात निश्चित है कि हमारी इंद्रियां जो हैं उनका बहुत गहरा रिश्ता है मन के साथ। देखिए कितना गहरा रिश्ता, कि इतना बड़ा निर्णय युद्ध करना या न करना देखने से बदल रहा है, केवल देखने से बदल रहा है। भीष्म और द्रोण ने कुछ नहीं कहा अभी तक। ऐसा नहीं कि भीष्म और द्रोण आके ऐसे, अर्जुन क्यों कर रहे हो, प्लीज अर्जुन छोड़ दो, ऐसा किसी ने कुछ अभी तक कहा नहीं, सब चुप, सब शांत है। यहां पर केवल एक ही अर्जुन की इंद्रिय चल रही है, आंखें। आंखों से अर्जुन ने देखा और अर्जुन के मन में ये सब कुछ दुविधा, ये मन स्थिति चालू हुई है। कल्पना कीजिए, हम हमारे जीवन में हमारी बाकी इंद्रियां, पांच इंद्रियां जो हैं, ये पांच इंद्रियों से कितने अलग अलग विषय वस्तु के संपर्क में अलग अलग समय स्थल पर आते हैं, तो कितनी दुविधा मन स्थिति हमारी होती होगी, करूं या न करूं, जाऊं या न जाऊं, देखूं या न देखूं, खाऊं या न खाऊं, बैठूं या खड़ा रहूं, सोऊं या जगा रहूं, बुधवार को आऊं या ना आऊं। इसलिए यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि भगवान दूसरे अध्याय में शरीर और आत्मा का भेद शुरू किए बताना, कि अर्जुन तुम समझो कि ये जो तुम्हारा मन है ना, जो तुम्हें इतना सब कुछ बुलवा रहा है, ये तुम्हारे स्थूल शरीर से अलग है और तुम्हारा आत्मा इन दोनों से अलग है। अब देखिए, एक हमारी आंखें, एक इंद्रिय को यदि हम ले, ये आंखें, आंखों के लिए कितने अलग अलग प्रकार के विषय वस्तु हैं दुविधा में डालने के लिए, है ना। आंखों को दुविधा में डालने के, आंखें दुविधा में नहीं जाती। अब देखिए, मान लो आपने बहुत सुंदर पेंटिंग देखी, आंखों ने देखी, तो ऐसा नहीं कि आंखें वहां जंप करने लगेगी अंदर बहुत खुशी खुशी में, ऐसा देखा है कभी? वो मन अंदर खुश होता है आंखों के द्वारा। तो ये मन क्या है? ये मन है ना, भूत के समान है। भूत, भूत का कोई शरीर नहीं होता ना, इसलिए वो दूसरों के शरीर में घुस घुस के भोग करता है। तो ये मन, ये भूत के समान है। ये मन खुद भोग नहीं कर सकता तो आंखों को बोलता है, देख उधर देख, मुझे दिखा, मैं तेरे द्वारा ही देख सकता हूं। आंखें, ये मन जो है जीवा को बोलता, खा इसे, खा, तो तेरे द्वारा मैं खा सकता हूं। वो भूत होता है ना, उसका कोई स्थूल शरीर नहीं होता, इसलिए वो ढूंढता रहता है किसी के शरीर में जाकर। तो ये हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इस भूत को संतुष्ट करने में, कोई इधर भाग रही इंद्रिया, कोई वहां भाग रही है, इसे देखो, इसे सुनो, इसे स्पर्श करो, इसे खाओ, ये लो वो लो, ये सब अंदर, ये मन बैठा, वो बैठा गद्दी पे ऐसे डिक्टेट कर रहा है, चलो इधर चलो उधर चलो। तो एक है इंद्रियों का प्रभाव मन पर, और फिर उल्टा मन का प्रभाव इंद्रियों पर। कैसे? कि जब विषय वस्तु सामने नहीं तो मन फिर इंद्रियों को दौड़ाता है कि पहले जो भोग किया था उसे ढूंढो, फिर अब मन दौड़ाएगा। पहले इंद्रियां सामने आती हैं तो इंद्रियों के द्वारा मन ललचाता है, और फिर जब विषय वस्तु सामने नहीं इंद्रियों के, तब मन इंद्रियों को दौड़ाता है उस विषय वस्तु को ढूंढने के लिए और फिर भोगने के लिए। तो यहां पर हमें यह समझना होगा कि अर्जुन की दुविधा मन स्थिति प्रारंभ हुई है एक बहुत स्थूल स्तर पर, केवल देखने से। इसलिए यह शिक्षा हमें लेनी चाहिए कि हमें ये इंद्रियों और इंद्रियों के विषय वस्तु का जो संस्पर्ग होता है उसमें दुविधा में नहीं जाना चाहिए कि क्या करूं क्या न करूं। इसलिए मन इस फेर में पड़ता है, इसे कहते हैं संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प, संकल्प का अर्थ है हां चाहिए चाहिए मुझे ये चाहिए, संकल्प लेता है। विकल्प, अलग अलग प्रकार के विकल्प सामने आते हैं कि नहीं ये नहीं भी लूं तो ठीक रहेगा, ले लूं तो भी ठीक रहेगा, छोड़ दूं नहीं, कैसे छोड़ूं, लेकिन छोड़ना तो है, फिर भी प्रयास करूंगा नहीं छोड़ने का, लेकिन छोड़ना पड़ेगा, ये भौतिक संसार है, छोड़ना हो। कितनी बार हम अकेले खड़े ये डायलॉग चलता रहता है कोर्ट कचहरी का, डिफेंस प्रोसिक्यूटर और हम जज, बेचारा जज वो देखा बीच में खाली वो हथौड़ा बजाता रहता है। एक बार एक पियक्कड़ को कोर्ट में ले गए, पियक्कड़ जानते ना, तो कोर्ट में ले गए, कोर्ट में अब वहां पर भी वो अपने हाई स्पिरिट में ही था, तो वहां पर देख रहा है सबको, वैसे ही कोर्ट वैसा ही है जैसा सुना था, तू उधर ही खड़े हो मालूम था मुझे, वो शुरू कर दिया अपनी भाषा में, तो जज देख रहा है अभी ये क्यों बड़बड़ कर रहा है, तो जज वहां से ऑर्डर ऑर्डर बजाते हैं ना हथौड़ा, ऑर्डर ऑर्डर तीन बार ऑर्डर ऑर्डर किया, अच्छा इधर भी ऑर्डर लेते हो बोला ठीक है एक पैक सोडा डाल के तो कई बार हमारी स्थिति वो कोर्ट के समान होती है, एक डिफेंस, एक प्रोसिक्यूटर, और हम बीच बीच में वो धीरे धीरे बोलते हो थोड़ा मार के ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, और कई बार वो इंद्रियां चिल्लाती चुप, फिर वो मन और इंद्रियां ये दोनों का कोलैबोरेशन, और हम केवल देखते रहते हैं। तो यदि हम ये दुविधा मन स्थिति को और गहराई से पहचानने की कोशिश करें तो एक है भौतिक स्तर और एक है आध्यात्मिक स्तर। भौतिक स्तर पर तो दुविधा मन स्थिति हम सब अनुभव करते हैं, हर क्षण हमारे सामने कितने सारे विकल्प और संकल्प आते रहते हैं। एक है आध्यात्मिक स्तर पर भी दुविधा मन स्थिति होती है। आप लोग दुविधा में चले गए, आध्यात्मिक स्तर पर कैसे? देखिए भौतिक स्तर पर दुविधा मन स्थिति आती है जब एक सही वस्तु और एक गलत वस्तु में हमें चयन करना होता है, when we have to choose between the right and the wrong, है ना। अब यदि दोनों गलत है तो दुविधा मन स्थिति नहीं आएगी, यदि हम पूर्ण निश्चित हैं कि ये दोनों गलत है तो हम दुविधा मन स्थिति में नहीं जाएंगे कि किसका चयन करना है। जैसे जैसे मान लीजिए कोई हमसे पूछे, अच्छा आपको कौन सी बीमारी चाहिए, एड्स कैंसर बताओ, क्या एड्स और कैंसर कौन से अच्छा लगता है, एड्स छोटा शब्द है ना, कैंसर थोड़ा बड़ा है, कौन सा चाहिए, ए फॉर एड्स, सी फॉर कैंसर, कौन सा चाहिए, तो उसमें हमारी ज्यादा दुविधा मन स्थिति नहीं होगी कौन सा चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो देखिए हम जब भक्ति में आते हैं तो शुरुआत में भक्ति में हमें बताया जाता है कि हम जिसे सही मान रहे थे वो गलत था, और हम जिसे गलत मान रहे थे वो सही है। उदाहरण शरीर, जिसे हम शरीर मान रहे थे हम वो शरीर हैं ही नहीं, हम वास्तविक रूप में हमारी आत्मा है। तो जब हम शुरुआत करते हैं भक्ति की तो ये एक दुविधा मन स्थिति होती है कि क्या सही क्या गलत समझ में आ रहा है। धीरे धीरे जब समझ में आता है तो वो एक स्थिति होती है कि गलत चीजों को मुझे छोड़ना है, सही चीजों को मुझे पकड़ना है, चार नियम मुझे पालन करने, अर्थात ये चार जो अधर्म की चीजें हैं वो मुझे छोड़नी है और धर्म की चीजों को पकड़ना है, सही गलत। तो इसके अंदर ये दुविधा मन स्थिति हमारी रहती। आध्यात्मिक स्तर पर सही एवं और सही है ना, कि रसगुल्ला खाऊं या गुलाब जामुन खाऊं, अभी अभी ये पूछा जाए, उसमें भी दुविधा मन स्थिति आती ना। कि एक और समोसा लूं कि एक और रसगुल्ला लूं कि गुलाब जामुन लूं या सब लूं खत्म होने से पहले। तो अब यहां पर एक उदाहरण कृष्ण लीला से हम देखेंगे दुविधा मन स्थिति। आध्यात्मिक संसार में भगवान के नित्य पार्षद भी दुविधा मन स्थिति में जाते हैं। यशोदा मई दामोदर लीला, भगवान को दूध पिला रही है, दूध उबल रहा है, किचन में दूध उबल रहा है, यहां पर भगवान को दूध पिलाया जा रहा है, वहां दूध उबल रहा है, दुविधा मन स्थिति। भगवान को दूध पिलाती रहूं या उस दूध को संभालूं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं क्रॉसरोड्स इन आवर डिवोशनल सर्विस। इसमें दोनों भगवान की सेवा है, भगवान को वो भी दूध भगवान के लिए उबल रहा है और यशोदा मई जो अपना दूध पिला रही है वो भी भगवान की सेवा चल रही है। तो दोनों दूध भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं या एक होने वाला। तो यशोदा मई की दुविधा मन स्थिति यहां पर ये आध्यात्मिक स्तर पर है कि ये एक सेवा है और इससे अच्छी भी एक सेवा यदि सामने आती है। तो जैसे कि हमारे राधा गोपीनाथ के एक ब्रह्मचारी क्लास में वो राधानाथ महाराज से एक प्रश्न पूछ रहे थे। कि अक्सर ये प्रश्न हम लोग भी शुरुआत में पूछते हैं कि जप करते समय मन भ्रमित होता है, मन यहां वहां जाता है जप करते समय, होता है। तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि मैं जब जप करता हूं तो मुझे संस्कृत के श्लोक याद आते हैं, अलग अलग संस्कृत के उपनिषद के पुराण के संहिता के इतिहास के महाभारत के श्लोक। तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा, माय माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड संस्कृत श्लोक। तो सभी देख रहे थे कौन है भाई ये प्रश्न पूछने वाला है। हम लोग केवल इतना ही बोलते ना, माइंड गेट्स डिस्ट्रैक्टेड, ये नहीं बताते कहां है ना, वो हिम्मत नहीं होती बताने कहां। कोई हमसे पूछ ले अच्छा माइंड डिस्ट्रैक्ट कहां होता है डिस्ट्रैक्ट, नहीं वो थोड़ा प्राइवेट में बताएंगे ना आपको, ऐसा आप पब्लिक में पूछ लेते सब। तो अब यहां पर हम लोग को लग रहा था भाई हम लोग जब जब करते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन संस्कृत के तो कोई श्लोक याद नहीं आते। और इनका डिस्ट्रैक्शन देखिए किस स्तर पर डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन भी विक्षेप भी किस स्तर पर है। तो यहां पर जब हम दुविधा मन स्थिति की बात कर रहे हैं तो यशोदा माई की दुविधा मन स्थिति और अर्जुन की दुविधा मन स्थिति एक नहीं है। यहां यशोदा माई भगवान की सेवा में कौन सी सेवा भगवान को ज्यादा संतुष्ट करेगी इसके बारे में विचार चल रहा है। तो हमें दुविधा मन स्थिति को त्यागना नहीं है। जैसे कई बार हम जब थोड़ा प्रगति करते हैं तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुझे जब ज्यादा करना चाहिए या रीडिंग ज्यादा करना चाहिए, है ना। धीरे धीरे एक आध्यात्मिक प्रगति हम पूछ रहे हैं कि जब ज्यादा करना चाहिए कि हियरिंग ज्यादा होना चाहिए, श्रवण ज्यादा होना चाहिए कि कीर्तन ज्यादा होना चाहिए। हाँ मतलब कम से कम हम उस स्तर से तो ऊपर आए कि चाय पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, पहले वहां से शुरू किया था हमने, है ना। पिक्चर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, अब यहां पर श्रवण ज्यादा करना चाहिए कि कीर्तन ज्यादा करना चाहिए, यह भी एक दुविधा मन स्थिति, परंतु ये सराहनीय है। कम से कम दोनों जो मुद्दे जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो आध्यात्मिक है, तो इसलिए यहां पर यह जानना होगा कि अर्जुन की दुविधा मन स्थिति कौन से स्तर की है। आगे भगवान अपने मत में बताएंगे कि अर्जुन की दुविधा मन स्थिति कौन से स्तर की थी। अब अर्जुन अपना जो महात्याग यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान के सामने, और ऐसा नहीं कि अर्जुन किसी को दिखाने के लिए ये त्याग या त्यागी बन रहे हैं, कई बार किसी को दिखाने के लिए त्याग किया जाता है ताकि लोग देखें मैं क्या त्याग रहा हूं, नहीं। अर्जुन यहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना प्रस्ताव रख रहे हैं, ये त्याग का प्रस्ताव। ये समझना होगा कि अर्जुन यहां भगवान को भगवान के पिछले अवतार की याद दिला रहे हैं कि आप जो प्रभु श्री राम के रूप में अवतरित हुए पिछले युग में, आपने जो इतना बड़ा त्याग किया, किसका त्याग किया? राज्य का। यहां पे मैं राज्य के पीछे दौड़ रहा हूं और आप का राज्याभिषेक होने वाला था बिना युद्ध के, और वो भी एक कुबड़ी स्त्री और आपकी सौतेली मां, इनके पीछे आप 14 वर्ष सब कुछ त्याग कर चले गए। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से हमारे मन में यदि त्याग की भावना न आए तो हमने रामायण पढ़ी नहीं। त्याग के मूर्तिमान स्वरूप एक से एक बढ़कर रामायण में देखेंगे हम। कई कई ने जब प्रभु श्री राम को वनवास जाने का वो वर मांगा, पहले तो राज्य नहीं और फिर वनवास, तो प्रभु श्री राम को जब ये समाचार सुनाया गया, और कब सुनाया गया? जब अगले दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला है, एक दिन पहले बताया। ऐसा भी नहीं कि कुछ नोटिस दिया कि भाई एक साल बाद पोस्टपोन किया, नहीं, गया, मिलने ही नहीं वाला है। भरत को मिलेगा और उसके साथ आपको जाना है 14 वर्ष वनवास। तो प्रभु श्री राम कई कई से क्या कहते हैं, इतनी सी बात, वो बोलते हैं इतनी सी बात बोलने के लिए आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं, आप किसी दूत के द्वारा ये समाचार मुझे दे देती, बस। सोचिए प्रभु श्री राम के लिए इतनी सी बात है और हमारी इतनी सी बात, हम इतना बड़ा पहाड़ उसको बना लेते हैं, बस आई नहीं टाइम। मानो आसमान नीचे गिर गया, बस आई नहीं टाइम। या लाइन में खड़े टिकट के कोई थोड़ा धीरे चल रहा है आगे, कोई गाड़ी आगे 2 मिनट रुक गई तो पीछे बमबारी चालू हो जाती है, पीछे आगे क्यों नहीं गई, सिग्नल चालू हो गया, 1 मिनट तक गाड़ी कैसे खड़ी है। यहां पे देखिए 14 वर्ष वनवास, सब कुछ लुट गया यहां पर, और वो कहते हैं कि इतनी सी बात, प्रभु श्री राम बोलते हैं। और वो कई कई को धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु श्री राम कई कई को धन्यवाद देते कहते हैं कि इस पूरे अयोध्या में केवल आप ही हैं मेरे हित चिंतक, राम कहते हैं, क्योंकि मेरा विवाह सीता के साथ हुआ अभी अभी, और मुझे ये राज्य सब दे रहे थे पिताजी, तो कहां मैं सीता के साथ समय बिता पाता? आपने 14 वर्ष के लिए मुझे और सीता को एक साथ रहने के लिए भेज रही, आपसे बड़ी हित चिंतक कौन हो सकते हैं? उनका दृष्टिकोण देखिए, प्रभु श्री राम का दृष्टिकोण देखिए। और ऐसा नहीं कि वो कैकेयी के सामने ये सब कुछ जता रहे थे कि कैकेयी को दिखाने के लिए, कैकेयी का हृदय पिघल जाए इसलिए मैं ये दिखाऊं त्याग मेरा। कई बार आप देखो लोग कुछ त्याग दिखाते हैं तो दिखाते हैं ना, दिखाना चाहते हैं कि चंदुमल मुंगीमल जो भी जिन्होंने कोई पंखा डोनेट किया तो चंदुमल ने पंखे का एक ब्लेड डोनेट किया है, उनके बड़े भाई ताऊ जी ने दूसरा ब्लेड डोनेट किया है और वो तीनों का नाम ब्लेड पे होना चाहिए। घूमेगा तो किसको पढ़ सकते हो? तीनों का नाम होना चाहिए, बीच में फिर उनके पिताजी का नाम। तो जितने भी चंदुमल से लेके जितने मल हैं सब ऊपर उनके नाम होने चाहिए। कई बार आप दो तीर्थ स्थान में देखो वो एक एक छोटी छोटी वो टाइल के ऊपर पूरे उनके वंश का, समुदाय का, साम्राज्य का नाम उसके अंदर होता है एक टाइल पे। यहां पे प्रभु श्री राम का त्याग देखिए। वो निषाद राज गुह, अब सुमंत्र वो ले गए, दशरथ महाराज वहां पर व्याकुल घायल गिरे हुए, सुमंत्र ले गए और प्रभु श्री राम निषाद राज गुह जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि आपको वनवास दिया है ना 14 वर्ष का, ये वन है, मैं यहां का राजा हूं, इस वन का मैं राजा हूं, आप यहां रहे 14 वर्ष यहां पे रहिए। और उन्होंने पूरा निश्चित कर लिया कि ठीक है, वो भी कैकेयी को धन्यवाद दे रहे थे कि अब प्रभु श्री राम मेरे साथ 14 वर्ष रहेंगे। अब देखिए बहुत अच्छा प्रपोजल था ना, वन में भी वन में रहना हो जाएगा और राजा के राजा बने रहेंगे, ऐश का ऐश, कैश का कैश, है ना, क्योंकि बिना कैश दिए ऐश नहीं होता आजकल। तो यहां पे सबसे पहले फिस्ट लेके आ गए वो शुरुआत कि आप आए इसका जश्न मनाया जाए, फिस्ट। वो राजा वन के राजा तो पूरा फिस्ट लेके आए, तो प्रभु श्री राम ने वो पूरा फिस्ट घोड़ों को खिलाया। किसके घोड़े? वो रथ के, सुमंत्र अयोध्या के जो घोड़े उनको खिलाए। और भगवान कंदमूल, भगवान ने कहा कि मैंने मुनि व्रत धारण किया है, मुनि वेश धारण किया है, इसलिए मुनि आहार भी मेरा होना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम उस समय गुहा, निषाद राज गुहा के साथ जब उन्होंने ये फीस प्रस्तुत किया तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि यदि मैं इसे खा लूं तो कैकेयी को बुरा लगेगा। किसके बारे में सोच रहे? देखिए, हमारे साथ यदि कोई करे ऐसे तो उसको और दिखा दिखा के खाएंगे, उसे फोटो भेजना उसको। कि तुमने मुझे यहां भेजा, देखो मालपुआ खा रहा हूं, लो कर लो क्या करना है। प्रभु श्री राम कैकेयी के बारे में सोच रहे हैं कि कैकेयी क्या सोचेगी, कैकेयी को बुरा लगेगा कि मैंने उसे वनवास दिया और वो वहां पे उनकी फिस्टिंग चल रही। इसे कहते त्याग। और हालांकि एक और रामायण में एक ऐसे चरित्र हैं त्याग के, मूर्तिमान, जिनकी गुण गाथा राम से भी ज्यादा गाई गई है वो है भरत। भरत के विषय में माता कौशल्या कहती हैं कि मेरे 1 करोड़ राम भी मैं पैदा करूं ना, 1 भरत के समान नहीं होगा। भरत, इनके बारे में कहा गया है कि देखिए प्रभु श्री राम का तो गुणगान हुआ उनके त्याग, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो स्वीकृति दी वनवास जाने की, जो कुछ उनका गुणगान पूरे अयोध्यावासी, परंतु भरत उनकी स्थिति देखिए, भरत जहां कहीं से गुजरते सभी लांछन देते, इसके वजह से हुआ है सब कुछ। 14 वर्ष भरत इनको वो सारे आरोप लांछन अपने ऊपर लेते हुए उनको जीना पड़ा। इसलिए भरत वो अयोध्या, एक तो पादुका रखे प्रभु श्री राम की, स्वयं तो राज्य में रहे नहीं, राज्य करना तो दूर, राज्य में भी नहीं रहे, राज्य के बाहर एक झोपड़ी में ये जो बारले जौ वो गोमूत्र में उसको सोख कर केवल वो 14 वर्ष खाया उन्होंने, बस वही। और एक भरत के विषय में प्रसंग बताया गया है कि सोते समय एक दिन, पहले दिन, अब अयोध्या छोड़ चुके हैं, प्रभु श्री राम वापस नहीं आ रहे, सब जान लिया, तो अब बाहर रह रहे हैं नंदीग्राम उस जगह पर। तो सोने का जब समय आया तो वो खड्डा खोदने लगे, और इनके साथ शत्रुघ्न, उनको भेजा था माता सुमित्रा ने। माता सुमित्रा का भी चरित्र आप देखिए कि माता सुमित्रा ने उनके 2 पुत्र शत्रुघ्न और लक्ष्मण, तो माता सुमित्रा का त्याग देखिए, इन सब का त्याग इतना हम नहीं सुने रामायण में, माता सुमित्रा का त्याग इतना कि एक बेटे को राम की सेवा के लिए भेजा, दूसरे बेटे को भरत की सेवा के लिए। और जब लक्ष्मण ने जाने की बात की कि मैं प्रभु श्री राम के साथ जाना चाहता हूं, तो प्रभु श्री राम ने कहा भाई वनवास मुझे मिला है, तुम क्यों? तो उनका उसमें उस चर्चा हुई, और जब प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है तुम्हारी माता का तुम्हें उनकी अनुमति लेनी होगी, तो जब लक्ष्मण जाते हैं डरते हुए कि सुमित्रा यदि अनुमति नहीं देगी, मेरी माता यदि अनुमति नहीं देगी, तो प्रभु श्री राम मुझे नहीं ले जाएंगे, तो डरते हुए जाते हैं कि सुमित्रा देवी मुझे अनुमति दे दे, आशीर्वाद दे दे प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष वनवास जाने के लिए। अब सुमित्रा देवी को कुछ पता नहीं, लक्ष्मण जाकर सुमित्रा देवी को बताते हैं कि ये सब कुछ हुआ है। जैसे ही बताते हैं तो सुमित्रा देवी की पहली प्रतिक्रिया देखिए, सुमित्रा देवी लक्ष्मण से पूछती है तुम जा रहे हो ना, तुम ये तो नहीं बताने आए कि केवल वो अकेले जा रहे हैं? ये उनकी प्रतिक्रिया। सुमित्रा देवी ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा एक आदेश मैं तुम्हें देने चाहती हूं लक्ष्मण, कि 14 वर्ष तुम प्रभु श्री राम के मुख की तरफ मत देखना। उन्होंने पूछा क्यों? वो कहती हैं क्योंकि प्रभु श्री राम इतने सुंदर हैं कि उनकी मुख की तरफ तुम देखोगे तो तुम तुम्हारी सेवा भूल जाओगे, तो तुम उनकी सुंदरता का भोग मत करना, तुम वहां सेवक के रूप में जा रहे हो, सेवा करो। ये होती है माता जो अपने पुत्रों को, बेटों को राम की सेवा में लगाए, न कि काम की सेवा में। तो भरत वो खड्डा खोद रहे थे रात को सोने से पहले, तो जब पूछा गया, शत्रुघ्न ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो भरत कहते हैं कि राम कहीं पर भी इस पृथ्वी में होंगे अभी, वो तो पृथ्वी पर सोएंगे, मैं उनसे नीचा सोना चाहता हूं। मैं कैसे किसी ऊंचे आसन पर सो सकूं, किसी ऊंचे शैया पर सो सकूं। इसलिए वो खड्डा खोद के नीचे सोते। और सुबह सुबह वो जाते सरयू में स्नान करने के लिए, ताकि कोई उनका मुख न देख सके। भरत अपने आप को मानते थे कि मेरा मुख इतना मनहूस है, मैं इतना मेरे में अपशकुन है कि मेरे वजह से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक रुक गया और उनको वनवास मिला, तो वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाते। ऐसा नहीं कि उन्हें शर्म आ रही थी, उन्हें ये लग रहा था कि कोई और मेरे चेहरे को देखकर दुर्भाग्यशाली न बने। इसलिए वो सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पहले जाते सरयू में स्नान करने के लिए। और सरयू का पानी रामायण में बताया इतना ठंडा उस समय हुआ करता कि जो पक्षी भी यदि वहां पर चोंच मारने के लिए, पानी पीने के लिए नहीं आते, इतना ठंडा पानी सरयू का। और भरत उस समय उस ठंडे पानी में स्नान करने जाते तो उनके जो विरह की अग्नि के वजह से सरयू उबलने लगती। हम इन महानुभावों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने ऐसा ऐसा त्याग दिखाया है। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण का त्याग ऐसा है रामायण में। विशेष रूप से मैं जब रामायण पढ़ रहा था पिछले साल, तो उसमें मुझे याद आ रहा है कि लक्ष्मण जी, वो प्रसंग इतना मार्मिक प्रसंग है सीता अपहरण का, जहां पर प्रभु श्री राम ने आदेश दिया लक्ष्मण को कि सीता को मत अकेले छोड़ना। और जब सीता देवी सुनती हैं, मारीच की आवाज थी, वो उस हिरण की आवाज थी, मारीच की आवाज थी, वो मारीच मरते समय बोला, हे सीते, हे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी जान गए ये प्रभु श्री राम की आवाज नहीं है। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। सीता देवी लक्ष्मण से कहती, जाओ, तुम्हारे भ्राता वो किसी कठिनाई में है, तुम जाओ। और लक्ष्मण कहते, हो ही नहीं सकता। उस समय सीता ने जो कटु शब्द कहे लक्ष्मण को, वो इतने कटु थे कि मानो यदि लक्ष्मण को कोई चीर फाड़ कर शारीरिक रूप से मारता तो भी वो सहन कर लेते। सीता देवी कहती हैं, अब मैं जान गई कि तुम यहां क्यों रुकना चाहते हो, तुम एकांत में मेरा भोग करना चाहते हो। तो जब लक्ष्मण ने ये बात सुनी, उनसे वो सहन नहीं हुई। वो लक्ष्मण जिन्होंने कभी सीता मैया के चरणों के ऊपर कभी देखा भी नहीं, वो जानते भी नहीं कि सीता मैया कैसी दिखती थी, इस प्रकार का आरोप लक्ष्मण जी के ऊपर। तो लक्ष्मण जी जान गए, ठीक है, जाना होगा। हालांकि वो लक्ष्मण रेखा निकाल कर गए, वहां गए तो वहां प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को देखा। प्रभु श्री राम लक्ष्मण पर क्रोधित हुए, अरे तुम्हें मैंने कहा था वहां रुकने के लिए, तुम अकेले छोड़कर आए। तो यहां पर इनको छोड़ा, इनके मुख से गाली, जहां गए उनके मुख से गाली। कल्पना कीजिए, और कोई भाई होता तो भाड़ में जाए तुम दोनों, क्या चल रहा है पति पत्नी में। इसलिए लक्ष्मण जी का ये जो प्रसंग है बहुत महत्वपूर्ण है हमें जानना। सीता ने लक्ष्मण जी के चरित्र पर शंका की। सीता सस्पेक्टेड लक्ष्मण्स कैरेक्टर एंड राम सस्पेक्टेड लक्ष्मण्स कॉम्पिटेंस। एक पुरुष के जीवन में क्या चीज है, दो ही चीज है, कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस। दोनों सस्पेक्ट हुए लक्ष्मण के। हिज कैरेक्टर वॉज सस्पेक्टेड, हिज कॉम्पिटेंस वॉज सस्पेक्टेड, क्वेश्चन्ड। कल्पना कीजिए, इतना सब होने के बावजूद लक्ष्मण जी वो अपनी सेवा से, राम की सेवा से टस से मस नहीं हुए। और ऐसा नहीं जब सीता अपहरण हो गया सीता का, ऐसा नहीं उसके बाद फिर लक्ष्मण बोले क्यों, मैंने बोला था ना, एक बार भी वो व्यंग्यात्मक भाषा लक्ष्मण जी ने सीता के तरफ नहीं कही। हालांकि रामायण की चर्चा शुरू करते हैं तो वो एक अलग ही प्रसंग है जिसके लिए तो अनंत काल चाहिए हमें। तो यहां पर वो भगवान श्री कृष्ण को याद दिला रहे हैं कि आप जैसे त्यागी महात्यागी कहां हुए, कोई हुआ है? तो मानो मैं जो छोटा सा त्याग कर रहा हूं हस्तिनापुर, क्या इन्हें दे रहा हूं ना, क्या है ये आपके त्याग के सामने क्या है? तो अर्जुन मानो भगवान को भगवान के ही त्याग का प्रसंग याद दिलाते हुए कि भगवान हां हामी भर दें कि हां, अरे तुम मेरा भक्त है तो करेगा ही ना। आगे भगवान श्री कृष्ण का त्याग बताया गया है उसी अवतार में। जरासंध सब जानते हैं, महानुभाव को, जरासंध, जरासंध ने कितनी बार प्रहार किया? 17 बार, 17 बार भगवान ने पराजित किया जरासंध को, और 23 अक्षौहिणी सेना हर बार लेकर आता हो, उसका कैलकुलेशन हम अभी नहीं बताएंगे आपको, सैकड़ों करोड़ों सैनिकों को लेके 17 बार भगवान ने पराजित किया। अब देखिए जरासंध, जरासंध किस प्रकार का व्यक्ति था। 17 बार हारने के बाद जरासंध ब्राह्मणों को बुलाता है, उसके पूरे राज्य के ब्राह्मणों को बुलाता है और ब्राह्मणों को बुलाकर बंदी बना देता है कारागृह में, अंदर कारागृह में डाल के जरासंध कहता है, ब्राह्मणों से कहता है, मैं फिर से जा रहा हूं युद्ध करने, आप लोग प्रार्थना करना, आप लोग प्रार्थना करना, यदि मैं जीत के आया तो आपको मैं जीवन भर पूजूंगा, हार के आया खत्म आप लोग। ये देखिए, ये इसकी सेवा जरासंध की। तो भगवान को पता लग गया कि इसने ये ब्राह्मणों को कैद करके रखा है और यदि मैं इसको हराऊंगा तो ये ब्राह्मणों को मारने वाला है, तो भगवान उन ब्राह्मणों को बचाने के लिए भाग गए। 18वें बार भगवान, वो जो रणछोड़ भगवान को नाम मिला, उसका एक कारण ये था, वो ब्राह्मणों को बचाने के लिए, कि वो ब्राह्मण बचे रहें, मेरे ऊपर बदनामी आए कि ये रण छोड़ के भाग गया कोई गम नहीं, परंतु वो ब्राह्मण बच सके। तो ये सब चीजें मानो अर्जुन भगवान को याद दिला रहे, आप तो ब्राह्मणों को बचाने के लिए रण छोड़ के भागे। हालांकि वो आगे हुई थी लीला। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण का त्याग, प्रभु श्री राम का त्याग, ये सब देखिए। महाराज पृथु, इनका त्याग बताया गया है चतुर्थ स्कंद में श्रीमद् भागवत के। महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी, और 100 अश्वमेध यज्ञ उस समय केवल इंद्र, देवराज इंद्र ने किए थे, तो 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, अब बस सेंचुरी के लिए एक यज्ञ बाकी। तब इंद्र वो आए और वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व चुरा चुरा कर ले जा रहे थे, अलग अलग रूप में, कभी सन्यासी के रूप में, कभी किसी के रूप में आके चोरी कर। तो पृथु महाराज को समझ गया कि ये इंद्र है और ये सब कुछ कर रहे हैं, तो पृथु महाराज ने फिर मारने का निश्चय कर लिया, इंद्र खत्म करो इनको, अपना यज्ञ में अवरोध डाल रहे इंद्र। तब फिर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए इंद्र को बचाने के लिए, और उन्होंने कहा कि क्या खिताब तुम हासिल करना चाहते हो 100 अश्वमेध यज्ञ कर। और महाराज पृथु अपने लिए नहीं, वो प्रजा के लिए कर रहे थे सब कुछ, तो भगवान विष्णु ने कहा कि छोड़ दो वो सर्टिफिकेट, वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड इंद्र के पास रहने दो, 100 अश्वमेध यज्ञ। तो जब भगवान विष्णु ने पृथु महाराज से कहा तो पृथु महाराज ठीक है यदि आप बोल रहे हैं। पृथु महाराज कहते हैं कि मेरे यज्ञ करने का की सफलता क्या है, आप प्रकट हुए और क्या चाहिए मुझे, यज्ञ क्यों करते हैं। भगवान जो यज्ञेश्वर हैं उन्हें प्रकट करने के लिए, तो आप हो गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पृथु महाराज का त्याग चतुर्स्कंद में बताया गया है। और महाराज रंतिदेव इनका त्याग बताया गया है, इन्होंने जो व्रत किया था 48 दिन का फास्टिंग, निर्जल फास्टिंग, वो भी प्रजा के लिए। और फिर जब पारण का समय आया, फास्टिंग तोड़ने का समय आया, तब जैसे ही अन्न लेने वाले थे तो एक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा मैं भूखा हूं, तो उसमें से कुछ भाग उस ब्राह्मण को इन्होंने दिया। फिर जो भी बचा हुआ भाग था अपने परिवार के साथ जब ग्रहण करने ही वाले थे तो शूद्र आ गया, उसमें से फिर कुछ भाग उस शूद्र को दिया। फिर जितना बचा हुआ था उसके बाद एक व्यक्ति कुत्तों को लेके आ गया कि मेरे कुत्ते भूखे इनको खिलाओ। तो देखिए महाराज रंतिदेव जितना भाग, जितना बस जो भी बचा था सारा कुत्तों को खिला दिया, देखिए। और अंत में केवल पानी बचा था, पानी से वो अपना फास्टिंग तोड़ने वाले थे। तब एक चांडाल आया और उसने कहा मैं प्यासा हूं, भूखा नहीं प्यासा हूं, तो उसे वो पानी पिला दिया। एक बार मैं ये कथा सुना रहा था तो एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, वो किचन में और बनवा सकते थे ना इनके लिए। तो राजा थे ना तो किचन में बोलते थे थोड़ा बनाओ चार लोगों के लिए और खिचड़ी। तो मैंने कहा उनसे पूछो जाके। परंतु यहां पर महाराज रंतिदेव उन्होंने अपना त्याग दिखाया इन सब को, जो कुछ इनके पास था जो कुछ इनसे मांगा गया इन सब को दिया। और फिर ये सारे देवता परीक्षा ले रहे थे, प्रस्तुत हुए। तो ये सब उदाहरण हैं और अर्जुन भी ये सब जो भी उदाहरण शास्त्रों में हैं इन सब की सराहना की गई, गुणगान किया गया इन सब का। परंतु अर्जुन ये जो अपनी महानता महात्याग दिखा रहे हैं, भगवान इसका बिल्कुल सराहना नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं करने वाले। तो मानो अर्जुन इस भ्रम में न रहे कि मेरा भी लिस्ट में नाम आएगा इनके बाद। अब श्री कृष्ण का मत ये बहुत आवश्यक है जानना, भगवान श्री कृष्ण का मत क्या था। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक है अर्जुन का कर्तव्य। अर्जुन का कर्तव्य क्या? युद्ध करना। अब अर्जुन त्याग दिखा रहे हैं जो कि अर्जुन के अनुसार कर्तव्य से ऊंचा, कर्तव्य से ऊंचा उन्होंने अपना त्याग समझा कि मैं ये इनको दे रहा हूं। परंतु भगवान का मत क्या है? कर्तव्य और त्याग से ऊंचा है शरणागति। अर्थात क्या? शरणागति कर्तव्य और त्याग से ऊंची है। ये कैसे समझा जाए? शरणागति का अर्थ है, क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि वो निर्दिष्ट कर्म या वो निर्दिष्ट कर्तव्य जो व्यक्ति छोड़े मोहवश, वो तामसी त्याग है। भगवान कहते तामसिक त्याग है वो, मोड ऑफ इग्नोरेंस, दैट सैक्रिफाइस इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। अपने कर्तव्यों को छोड़ना मोहवश। और राजसी त्याग क्या है? भगवान कहते हैं कि अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को छोड़ना आलस्य के वजह से, कि नहीं मुझे इच्छा नहीं है सब कुछ करने की, वो रजोगुण में वो कहा गया। अब शरणागति का अर्थ है कि यदि भगवान कहे उसे त्यागो तो वो निर्दिष्ट कर्तव्य है, और भगवान कहे नहीं लड़ो तो वो निर्दिष्ट कर्तव्य है। अर्थात कर्तव्य और त्याग वो भगवान के निर्देशन में यदि हो तो उसे कहते हैं शरणागति। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद को पूछा गया, आर यू वेजिटेरियन और आर यू नॉन वेजिटेरियन? प्रभुपाद ने कहा हमको ना तो नॉन वेजिटेरियन में कोई रुचि है ना वेजिटेरियन में रुचि, जो भगवान खाते हम वो खाते। कृष्णाटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। अब देखिए, ये मैं सोच रहा था, इंग्लिश लैंग्वेज देखिए, इफ वेजिटेरियन आर दोज पीपल हु ईट वेजिटेबल्स, देन हु आर ह्यूमैनिटेरियन? इफ वेजिटेरियन आर दोज पीपल हु ईट वेजिटेबल्स, देन हु आर ह्यूमैनिटेरियन? ठीक है, वो अलग मुद्दा है हमारा। अभी श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा कि हमारे ऊपर ये वेजिटेरियन का ठप्पा भी नहीं लगाना चाहते। कई लोग बहुत सीना तान के कि मैं वेजिटेरियन, मैं शाकाहारी हूं, मैं ये नहीं वो नहीं खाता, ये नहीं खाता। प्रभुपाद ने कहा तो क्या बंदर भी वेजिटेरियन है? प्रभुपाद उसके द्वारा क्या बता रहे थे? वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट कृष्णा इज इंटरेस्टेड, उसे कहते हैं शरणागति। कि जो भगवान श्री कृष्ण की इच्छा वो हमारी इच्छा, इसे कहते हैं एकात्मता। दिस इज रियल वननेस। रियल वननेस इज नॉट दैट आई गो इन टू कृष्णा फॉर्म। रियल वननेस इज आई हैव द सेम डिजायर एज व्हाट कृष्णा डिजायर इज। तो हालांकि अब तक हमने ये सब कुछ सुना कि अर्जुन का महात्याग, गुरुजनों को देखकर ऐसी भाषा बोल रहे हैं अर्जुन कि अर्जुन की सराहना कोई क्यों नहीं करेगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल इसकी सराहना नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा कर्तव्य या जो तुम्हारा त्याग बता रहे हो, ये दोनों फालतू। ये एक उदाहरण हमारे शास्त्रों में दिया गया है कि थोड़ा स्ट्रांग उदाहरण है लेकिन उससे समझ में आएगा कि ये तथाकथित कर्तव्य और तथाकथित त्याग की श्रेणी क्या है। कि दो सुअर, उनका वाद विवाद चल रहा था कि कौन सा मल अच्छा है खाने में, सूखा गीला, और दोनों में बहुत सीरियस वाद विवाद चल रहा है पूरा प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के साथ। तो हमको क्या लगेगा, दोनों सुअर कहीं के? तो ये कर्तव्य और ये त्याग और ये सब कुछ, ये शरणागति के दृष्टिकोण से वैसा ही है। डिफरेंस बिटवीन वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल, बोथ आर अबोमिनेबल। इसलिए यहां तक अर्जुन अब पहुंचे हैं, भगवान बोलना शुरू नहीं किए क्योंकि अब तक शरणागति अर्जुन की नहीं हुई। अगले श्लोक में अब अर्जुन की शरणागति आने वाली है। जैसे ही अर्जुन की शरणागति हुई, श्री भगवान वाच शुरू होने वाला है। तो इसलिए यहां पर इस श्लोक तक हम ये समझ रहे हैं कि अर्जुन जो भी अपने तर्कों के उतार चढ़ावों में जा रहे थे, अंततः अर्जुन जब तक शरणागत नहीं हुए तब तक भगवान श्री कृष्ण कहे कि नहीं, अब तक खिड़की नहीं खुली है, द्वार नहीं खुला है, अब तक वो अपना मत प्रस्तुत कर रहा है। परंतु जब अब अगले श्लोक में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें अर्जुन कह देते शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम का अर्थ है सबमिशन, मैं अब प्रपन्नार्थी आपके शरणागत हूं, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मैं चुप, आप बोलो। तब फिर भगवान बोलना शुरू करते हैं और वो उसकी चर्चा हम करेंगे अगले हफ्ते। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत। श्रील प्रभुपाद की जाए। किसी का कोई प्रश्न? अनाउंसमेंट्स Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे प्रभुपाद की जय गौ प्रेमानंद।